एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपको झकझोर कर रख देगी। नाम है द मैनी लाइव्स ऑफ मामा लव, अ मेमोयर ऑफ लाइंग स्टीलिंग राइटिंग एंड हीलिंग।
जी हाँ, ये लारा लव हार्डन की आत्मकथा है। अगस्त 2023 में आई थी और ये बस एक कहानी नहीं है, ये बहुत ही कच्चा, बेबाक और मतलब अविश्वसनीय रूप से ईमानदार लेखा जोड़ा है उनके जीवन का।
और लारा लव हार्डन है कौन? मतलब उनकी कहानी आज इतनी जरूरी क्यों लगती है? सोचिए जरा, एक एकदम सही दिखने वाली उपनगरीय माँ, बच्चों के स्कूल के पीटीए मीटिंग्स में जाने वाली, बढ़िया घर, और फिर
अचानक वो हेरोइन की आदी बन जाती हैं।
हाँ, और सिर्फ आधी नहीं, 32 संगीन अपराधों मतलब फेलनीज के लिए गिरफ्तार होती हैं और जेल पहुंच जाती हैं। ये अपने आप में एक कहानी है, पर इसके बाद जो होता है वो शायद और भी ज्यादा कमाल का है।
बिल्कुल, क्योंकि जेल से निकलने के बाद वो न सिर्फ अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाती हैं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे दलाई लामा, डिज्मन टुटू, ब्रेने ब्राउन, ओपरा विनफ्रे, इनके लिए एक बहुत सफल बेस्ट सेलिंग सहायक लेखक मतलब घोस्ट राइटर और लिटरेरी एजेंट बन जाती हैं।
अरे वाह, और एक जानी मानी लिटरेरी एजेंसी की को फाउंडर और प्रेसिडेंट भी।
जी, तो ये कहानी सिर्फ गिरने और उठने की नहीं है, ये पहचान पर, शर्म पर, नशे की लत पर और उन सामाजिक ढांचों पर भी सवाल खड़े करती है जो हमें या तो बनाते हैं या तोड़ते हैं।
और शायद इसीलिए ये आज इतनी रेलेवेंट है ना? क्या हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या गलतियों के बाद जिंदगी को फिर से बनाना मुमकिन है, खासकर तब जब समाज आपको लगातार आपके अतीत से जज करता रहे?
हाँ, और आजकल जब ओपियोइड क्राइसिस इतनी बड़ी समस्या है, हमारी न्याय प्रणाली पर इतने सवाल हैं, लारा की कहानी हमें इन मुश्किल सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है।
तो चलिए इस असाधारण जीवन यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके शुरुआती जीवन से?
हाँ बिल्कुल, देखिए लारा का बचपन किसी दुख या तकलीफ में नहीं बीता। वो कैलिफोर्निया के एप्टोस नाम के एक अच्छे अमीर इलाके में पली बड़ी। एक खूबसूरत घर था, सब कुछ बाहर से एकदम परफेक्ट।
वो परफेक्ट दिखने वाली बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो इसमें माहिर थी, है ना?
जी हाँ बिल्कुल, और शायद यही जो परफेक्ट दिखने का दबाव था या जो हुनर था, उसने बाद में उन्हें वो दोहरा जीवन जीने में मदद की। लेकिन हाँ, इस चमकते मुखौटे के पीछे, जैसा अक्सर होता है, एक खालीपन था, एक असंतोष था। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी।
अच्छा, और अपराधों से पहले भी उनका एक अजीब सा प्रोफेशन था, है ना? पेट साइकिक।
हाँ, ये दिलचस्प बात है, वो पालतू जानवरों की भावनाओं को समझने वाली एक लोकप्रिय संचारक थी। पेट साइकिक, ये दिखाता है कि उनमें दूसरों की अनकही जरूरतों को समझने की, उनकी आवाज बनने की एक अनोखी क्षमता थी।
और शायद यही स्किल बाद में काम आई घोस्ट राइटिंग में।
बिल्कुल, यही हुनर उन्हें बाद में एक बेहतरीन घोस्ट राइटर बनाने वाला था, दूसरों की आवाज में लिखना, उनकी कहानी कहना।
तो फिर ये गिरावट कैसे शुरू हुई? ये परफेक्ट लाइफ पटरी से कैसे उतरी?
देखिए, ये भी कोई टिपिकल कहानी नहीं है। चौथे बच्चे के जन्म के बाद उन्हें दर्द के लिए विकोडिन दी गई, एक ओपियोइड दवा।
अच्छा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी?
जी, और ये दवा न सिर्फ दर्द कम कर दी थी, बल्कि इसने उन्हें एक झूठा आत्मविश्वास दिया, एक सक्षमता का एहसास। उनके अंदर की जो सेल्फ डाउट वाली आवाज थी वो शांत हो गई।
लेकिन ये दवा फिर लत बन गई।
हाँ, बहुत जल्दी, विकोडिन से शुरू हुई बात जल्दी दूसरी ओपियोइड्स और फिर तेजी से हेरोइन तक पहुंच गई। अब लत इतनी बढ़ गई कि उसे पूरा करने के लिए रोजाना सैकड़ों डॉलर चाहिए थे।
सैकड़ों डॉलर रोज? तो फिर
उन्हें अपराध का रास्ता चुनना पड़ा, अपनी इस सम्मानित माँ पड़ोसन वाली पहचान के पीछे छुपकर।
उन्होंने अपने ही पड़ोसियों के साथ?
हाँ, उनके मेल चुराना, चेक चुराना, क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना, पहचान की चोरी। अनुमान है कि लगभग $3 लाख की हेराफेरी की उन्होंने।
ये तो यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ बच्चों के स्कूल फंक्शन, पीटीए मीटिंग्स, और दूसरी तरफ ये सब, और किसी को पता नहीं चला, परिवार को भी नहीं?
नहीं, किसी को नहीं, वो इस दोहरे जीवन को बहुत सफाई से जी रही थी, और इस अपराध बोध से बचने के लिए उन्होंने अपने मन में एक काल्पनिक दोषी बना लिया था, द नेबर नाम से, जैसे ये सब कोई और कर रहा है, वो नहीं।
एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म।
हाँ बिल्कुल, सच्चाई से बचने का एक तरीका, लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं।
फिर गिरफ्तारी हुई, वो कैसे हुआ?
बहुत नाटकीय ढंग से, एक दिन पुलिस ने उनके उस आदर्श घर पर छापा मार दिया, सब कुछ सामने आ गया, परिवार, दोस्त, पूरा समुदाय, सबके सामने उनका दोहरा जीवन खुल गया। वो झूठी पहचान जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था और जिससे वो नफरत भी करती थी, वो एक झटके में टूट गई।
और फिर जेल? कितने आरोप लगे थे?
32 संगीन अपराध, फेलनीज। उन्हें सेंटा क्रूज काउंटी जेल भेज दिया गया। वहां उनसे उनका नाम छीन लिया गया। वो अब लारा लव हार्डिन नहीं थी, वो थी कैदी नंबर W13374। पहचान का पूरी तरह से मिट जाना,
ये तो भयानक है। लेकिन आपने कहा था जेल में कुछ अच्छा भी हुआ, वो मामा लव वाली बात।
हाँ, यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जेल की जो दूसरी महिला कैदी थी, उन्होंने लारा के अंदर का वो देखभाल करने वाला माँ जैसा स्वभाव देखा, उनके अपराधों के बावजूद।
अच्छा?
हाँ, और उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, मामा लव। ये उस अंधेरे में, उस अमानवीय माहौल में उनकी इंसानियत की पहचान थी, उनके अपराधों की नहीं। ये एक छोटी सी घटना थी, पर लारा के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
ये वाकई एक उम्मीद की किरण जैसी लगती है। पर जेल से बाहर आने के बाद एक फेलनी का रिकॉर्ड लेकर समाज में वापस आना तो बहुत मुश्किल रहा होगा।
मुश्किल, ये तो बहुत छोटा शब्द है, लगभग नामुमकिन था। नौकरी मिलना, घर मिलना, लोगों का भरोसा जीतना, सब कुछ। वो कहती है कि शर्म एक भूत की तरह उनका पीछा करती थी, हमेशा डर रहता था कि कोई उनका अतीत जान लेगा।
तो फिर ये साहित्यिक एजेंसी वाली इंटर्नशिप कैसे मिली?
किस्मत से, बहुत संघर्ष के बाद। डॉग एब्राहम्स नाम के एक शख्स की छोटी सी लिटरेरी एजेंसी थी, आइडिया आर्किटेक्ट्स। वहां उन्हें एक बहुत ही मामूली पार्ट टाइम इंटर्नशिप मिली। शुरुआत में काम था कचरा फेंकना, फोन उठाना, और अपना अतीत वो सबसे छिपा कर रखती थी।
लेकिन उनमें वो बात थी, है ना, वो टैलेंट।
बिल्कुल, उनकी मेहनत, उनकी समझ, कहानी कहने की वो क्षमता, वो छिपी नहीं रह सकी। धीरे धीरे वो इंटर्न से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनी, फिर एजेंट, और आखिर में उसी एजेंसी की को फाउंडर और प्रेसिडेंट बन गई।
ये तो कमाल है। लेकिन इस सफर में कोई ऐसा पल था जब उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा?
शायद वो पल तब आया जब उन्होंने हिम्मत करके अपने बॉस डॉग एब्राहम्स को अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था।
और डॉग ने क्या कहा?
डॉग की प्रतिक्रिया ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने गुस्सा या हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि सहानुभूति दिखाई। उन्होंने लारा का साथ दिया। ये शायद बाहरी दुनिया से मिली पहली असली स्वीकृति थी। इसने लारा को उनके शर्म के भूत से लड़ने की ताकत दी।
और इसके बाद ही उन्होंने वो बड़े नाम वाले क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया, दलाई लामा, डेस्मंड टूटू।
जी हाँ, इसके बाद उनका करियर उड़ान भरने लगा। 4 बार न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक बनी, सहायक लेखक के तौर पर, और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना सम्मानित नाम बन गई।
अविश्वसनीय सफर है। और अब वो सिर्फ अपनी सफलता पर ही फोकस नहीं कर रही हैं,
समाज में वापस आने में होती हैं। वो कहती हैं कि सिस्टम बदलना जरूरी है।
तो ये हमें उनके जीवन दर्शन पर लाता है। अगर हमें उनकी सोच को समझना हो तो उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे?
हाँ, इसे हम 3 मुख्य विचारों में बांट सकते हैं। पहला है कट्टर जवाबदेही, रेडिकल अकाउंटेबिलिटी।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अपने कामों की पूरी बिना किसी बहाने के जिम्मेदारी लेना। लाला कहती हैं कि वो तब तक नहीं बदल सकती थी जब तक उन्होंने अपने किए गए नुकसान को पूरी तरह माना नहीं। शर्म से असली मुक्ति छिपाने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अतीत को अपनी आज की पहचान का हिस्सा बनाने से मिलती है।
जैसे वो दुकान में उस पड़ोसी से मिलने वाली घटना।
हाँ बिल्कुल, सालों बाद ट्रेडर जोज में वो अचानक उस पड़ोसी से टकरा गई जिनसे उन्होंने चोरी की थी। वो पल बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया, माफी मांगी। ये है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी।
समझ गई। और दूसरा सिद्धांत?
दूसरा है दयालु जिज्ञासा, कंपैशनेट क्यूरियोसिटी। मतलब खुद को और दूसरों को बिना जज किए समझने की कोशिश करना।
जैसे जेल में उन्होंने दूसरी औरतों की कहानियों को सुना।
हाँ, सिर्फ उन्हें अपराधी मानकर खारिज नहीं किया, बल्कि उनके हालात, उनकी कहानियों को समझने की कोशिश की। और जब यही जिज्ञासा उन्होंने खुद पर लागू की तो उन्हें अपनी लत, अपने बर्ताव की जड़ों को समझने में मदद मिली, बिना खुद से नफरत किए।
और तीसरा?
तीसरा है हर इंसान का अंतर्निहित मूल्य, इनहेरेंट वर्थ। वो इस आइडिया को बिल्कुल नहीं मानती कि कुछ लोग फेंकने लायक होते हैं, मतलब थ्रो अवे पीपल। उनका अपना अनुभव, खासकर वो मामा लव वाला नाम, उन्हें सिखाता है कि किसी इंसान की कीमत उसकी सबसे बुरी गलती से तय नहीं होती। हर किसी में सुधरने की, बदलने की क्षमता होती है, अगर मौका और सहारा मिले।
ये तीनों सिद्धांत बहुत मायने रखते हैं। अब अगर हम उनके जीवन के उन खास मोड़ों की बात करें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से 3 होंगे?
हाँ, 3 पल खासतौर पर नजर आते हैं। पहला तो जाहिर है नशे की लत और अपराध की वो शुरुआत। वो पहली विकोडिन की गोली जो सिर्फ दर्द नहीं मिटा रही थी बल्कि उनके अंदर की असुरक्षा को भी शांत कर रही थी। ये एक फिसलन थी जिसने धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि कैसे एक आम सी लगने वाली चीज भी विनाश की तरफ ले जा सकती है।
और दूसरा मोड़ तो शायद उनकी गिरफ्तारी ही होगी।
बिल्कुल, जिस दिन पुलिस उनके उस परफेक्ट घर में आई वो उनके दोहरे जीवन का अंत था, उनकी झूठी पहचान का खात्मा। वो सबसे निचला पॉइंट था, सब कुछ छिन गया, इज्जत, भरोसा, आजादी। इसने उन्हें सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया। एक जिंदगी खत्म हुई ताकि दूसरी शुरू हो सके।
और तीसरा जो शायद सबसे पॉजिटिव था वो मामा लव नाम मिलना।
हाँ, मैं कहूंगा कि ये सबसे परिवर्तनकारी मोड़ था। जेल का वो माहौल जहां आप सिर्फ एक नंबर हैं, W13374, वहां किसी साथी कैदी का आपको आपकी इंसानियत के लिए पहचान देना, मामा लव कहना, ये बहुत बड़ी बात थी।
ये उनकी असलियत की पहचान थी, उनके अपराधों की नहीं।
सही कहा, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उम्मीद थी, एक नई पहचान की शुरुआत। इसने उन्हें खुद को सिर्फ एक अपराधी की नज़र से देखना बंद करने में मदद की। ये शायद वो पहला कदम था जिसने उन्हें खुद तक वापस पहुंचाया।
तो लारा की कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? आम लोग, इसमें क्या मानवीय सबक है?
देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हम अपनी सबसे बड़ी गलतियों से कहीं ज्यादा हैं, है ना? लारा की जिंदगी ये दिखाती है कि बदलाव मुमकिन है, विकास मुमकिन है, चाहे अतीत कितना भी काला क्यों ना रहा हो, ये उम्मीद देती है।
और वो कट्टर जवाबदेही वाली बात, क्या ये भी एक सबक है कि सच बोलने और जिम्मेदारी लेने से ही आजादी मिलती है?
हाँ बिल्कुल, शर्म और अपराध बोध से मुक्ति अतीत को दबाने से नहीं मिलती, उसका सामना करने से मिलती है, पूरी जिम्मेदारी लेने से, और जहां तक हो सके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करने से, जैसे उन्होंने उस पड़ोसी से मिलकर किया। मुश्किल है पर जरूरी है।
और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत, वल्नरेबिलिटी। जब उन्होंने अपने बॉस को सच बताया या अपनी किताब लिखी तो डर की जगह भरोसा पैदा हुआ।
हाँ, ये भी एक अहम सबक है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सच बोलने पर अच्छी प्रतिक्रिया मिले, रिस्क तो होता है, लेकिन लारा की कहानी दिखाती है कि प्रामाणिक होने का साहस अक्सर नए दरवाजे खोल सकता है। वो परफेक्ट दिखने का मुखौटा एक जेल जैसा है, असलियत चाहे कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना हो, आजाद करती है।
सही कहा, सच्ची आजादी शायद अपनी पूरी कहानी को अपनाने में ही है, अच्छी और बुरी दोनों।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन मुख्य बातें लेके जानी हों, तीन टेकअवेज, तो वो क्या होंगे?
जरूर, पहली मैं कहूंगा एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि है। शर्म को ताकत में बदला जा सकता है। लारा का जो भूत था, उनके अतीत की शर्म जिसे वो पहले भगाना चाहती थी, वही बाद में उनकी ताकत बनी। उनकी सहानुभूति, उनकी समझ उनके अनुभवों से ही निकली है। वो मामा लव नाम मिलना इसी बदलाव का प्रतीक है। सबसे बुरे वक्त में भी हमारी इंसानियत पहचानी जा सकती है।
ये बहुत गहरा है। दूसरी बात,
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। हमारी न्याय प्रणाली में वाकई गंभीर दिक्कतें हैं, सिस्टमिक बैरियर्स हैं। ये बाधाएं जेल से निकले लोगों को समाज में सफलतापूर्वक लौटने से रोकती हैं।
वो कागजी जेल वाली बात।
हाँ वही, नौकरी के फॉर्म पर वो बॉक्स टिक करना, घर ढूंढने में मुश्किल, समाज का डर, ये सब मिलकर एक अदृश्य जेल बना देते हैं जो अक्सर लोगों को वापस अपराध की दुनिया में ढकेल देती है। लारा की कहानी इस सिस्टम पर सवाल उठाती है कि क्या हम सच में दूसरा मौका दे रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है। और तीसरी एक यूनिवर्सल बात,
तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। हम अपने सबसे बुरे फैसलों का जोड़ नहीं है। लारा की कहानी हमें चैलेंज करती है कि हम खुद को और दूसरों को उनकी गलतियों से आगे बढ़कर देखें। ये याद दिलाती है कि जिंदगी में दोबारा शुरुआत करना, दूसरा मौका मिलना हमेशा मुमकिन है, अगर वहां जवाबदेही हो, करुणा हो और सहारा हो।
और ये हमें खुद से पूछने पर भी मजबूर करती है कि हमने किसे सिर्फ उसकी गलतियों के आधार पर आंक लिया है, और हम खुद अपनी गलतियों के अलावा कौन है।
बिल्कुल, यही सवाल है।
लारा लव हार्डन की कहानी वाकई असाधारण है। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एग्रेटर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।